शांति। इस संसार में मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें भाषा बोलने की क्षमता है, और भाषा के मुताबिक वह अपने मन की स्थिति का अनुभव कराता है। अर्थात भाषा के द्वारा अपने दिल की बातों को व्यक्त करता है। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य के बोल उसकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। मनुष्य जो शब्द उच्चारण करता है उसके आधार से पता चलता है कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है। वाणी के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है कि चाहे तो वह किसी को अपना मित्र बना दे और चाहे तो किसी को अपना शत्रु बना दे, चाहे तो किसी को दुखी कर दे, चाहे तो किसी को सुखी कर दे। यहां तक कि बोल में इतनी क्षमता है कि किसी शीतल व्यक्ति को भी क्रोध की अग्नि में जला सकता है, और किसी में अगर क्रोध की अग्नि हो तो उसके बोल उस अग्नि को बुझा सकते हैं। बोल में यह भी शक्ति है कि दो दिलों को मिला सकते हैं और दो दिलों को दूर भी कर सकते हैं। और बोल या तो वरदान सिद्ध हो सकते हैं या तो श्राप बन सकते हैं। इतनी शक्ति है शब्दों में। इसीलिए किसी ने ठीक कहा है कि मीठी वाणी बोल मनवा, मीठी वाणी बोल, तेरे बोल बड़े अनमोल। याद आता है एक वारदात। एक भिखारी किसी गुड़ के व्यापारी के पास पहुंचा और उसने कहा कि हमें थोड़ा सा गुड़ दीजिए। लेकिन व्यापारी ने गुड़ तो दिया नहीं और ही अपशब्द कटु वचन कहकर उसे दूर कर दिया। और उसी वक्त उस भिखारी के मुख से शब्द निकले कि अगर आप गुड़ नहीं देते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन गुड़ जैसे मीठे शब्द तो बोलो। तो देखिए, मीठी वाणी बोलने में कोई खर्चा नहीं। आप मीठी चीज किसको देंगे, हो सकता है उसमें आपका खर्च हो, लेकिन मीठे शब्द बोलने में आपका कोई खर्चा नहीं होगा। मधुर बोल हर एक व्यक्ति सुनना चाहता है, लेकिन अपशब्द कटु वचन कोई नहीं सुनना चाहता है। कहा जाता है ये 2.5 इंच की जुबान चाहे तो किसी को तख्त पर बिठाए और चाहे तो किसी को तख्ते पर चढ़ाए। अर्थात हमारे बोल किसे तख्त प्रदान कर सकते हैं और किसे तो तख्ते पर चढ़ा सकते हैं, अर्थात उन्हें फांसी की सजा दिला सकते हैं। इतनी शक्ति है बोल में। अगर हम कोई भी बात किसे भी मधुरता से देते हैं, वह व्यक्ति अवश्य सुनता है। और अगर हम शब्द वही लेकिन कटुता से देते हैं, तो आगे वाला व्यक्ति सुनने लिए भी तैयार नहीं होता। तो देखिए, मधुर बोलने में कितना फायदा है और कटु बोलने में कितना नुकसान है। लेकिन जितना ही मधुर बोल हमारे लाभदायक होते हैं, समाज के लिए सुखकारी होते हैं, उतना ही कम बोलना भी लाभकारी है। कई ऐसे लोग हैं जो बोलते तो मधुर हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बोलते हैं और कई बार तो बिना अर्थ का बोलते हैं। वास्तव में जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो ज्यादा नहीं बोलेगा, नपातुला बोलेगा, और जो उसके शब्द होंगे वे अर्थ सहित होंगे। देखा जाता है कि जो ज्यादा बोलता है, व्यर्थ बोलता है, वो सोचता भी अधिक है। जैसे उसके सोच होंगे वैसे ही उसके मुख से बोल निकलते हैं। अगर सोचने की गति तीव्र होगी तो बोलने की भी गति तीव्र होगी, और सोचने की शक्ति कम होगी या गति कम होगी तो बोलने की भी गति उतनी ही कम होगी। तो अधिक सोचने से शक्ति खर्च होती है, वैसे ही अधिक बोलने से भी शक्ति खर्च होती है। एक व्यक्ति एक मील पैदल करे और दूसरा व्यक्ति एक घंटे तक बोलता ही रहे, दोनों की शक्ति समान खर्च होती है। और देखा गया है कि कम और धीरे बोलने से वाचा का प्रयोग कम होता है तो शक्ति की बचत होती है। जिन व्यक्तियों को समय का महत्व होगा, वे समय के महत्व को समझेंगे, समय को भी एक संपत्ति मानेंगे, तो वे अपना समय यूं ही व्यर्थ शब्दों में गंवाएंगे नहीं। वे कम बोलेंगे और धीरे बोलेंगे। इसीलिए किसी ने कहा है, कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो या मीठा बोलो। और देखा गया है कि अगर हम एक को भी अपना लक्ष्य बनाते हैं तो बाकी दो अपने आप आते हैं। मान लीजिए हमने यह लक्ष्य बनाया कि हमें कम बोलना है, जहां पांच शब्दों में हमारा काम निकल सकता है वहां 50 शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं। और अगर ये लक्ष्य बनाया कि मुझे कम बोलना है तो अपने आप वो धीरे भी बोलेगा और खुद ब खुद वो शब्द मधुर ही होंगे, क्योंकि कम बोलना माना नपे तुले शब्द बोलना, तो वे कड़वे शब्द कभी नहीं होंगे। कड़वे शब्द तो अधिक से अधिक बोलते हैं और जोर से भी बोलते हैं और उतना ही जोश से सोचते भी हैं। इसी प्रकार अगर कोई यह लक्ष्य रखे कि मुझे धीरे बोलना है, कुछ भी हो जाए, चाहे कोई व्यक्ति मेरे से कितना भी जोश से बात करे, जोर से बात करे, चिल्ला कर बात करे, लेकिन मुझे धीरे से बोलना है। और अनुभव कहता है कि अगर हम धीरे से बोलेंगे तो चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना भी जोर से बोलता हो, वो अपने आप धीरे से बोलने लग पड़ेगा। अगर हम उसे कहेंगे कि आप धीरे से बोलो तो शायद वो धीरे से न भी बोले। वो जोर से बोल रहा है और हम उसे जोर से कहे कि धीरे से बोलो, तो वो व्यक्ति क्यों धीरे से बोलेगा, क्योंकि मैं भी तो जोर से बोल रही हूं। तो अगर किसी से धीरे से बुलवाना है तो पहले हम धीरे से बोलें और अपने आप वो व्यक्ति समझदार होगा तो वह भी धीरे से बोलने लगेगा। तो कम और धीरे बोलना, ये तो फिर भी हम लक्ष्य रख सकते हैं, लेकिन साथ साथ मधुर बोलना, कम और धीरे बोलने के साथ साथ अगर मधुर बोलने का लक्ष्य रखेंगे तो कम और धीरे अपने आप शब्द निकलेंगे। कई ऐसे लोग हैं जिनको जब तक वे लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, मारामारी नहीं करेंगे, जोश से नहीं बोलेंगे, तब तक शायद उनको भोजन ही हजम नहीं होता है। एक बार एक किस्सा हुआ था, किसी गांव में एक महिला थी, उसे हमेशा डांटने की, लड़ने की, जोश से बोलने की, गालियां देने की आदत थी, और जिसके पास भी वो जाती वो वातावरण को बिगाड़ कर ही आती थी। तो एक दिन सभी गांव वालों ने सोचा कि आज इसके साथ कोई भी बातचीत नहीं करेगा, चाहे ये कुछ भी बोलती रहे लेकिन हम इससे बातचीत नहीं करेंगे, जवाब नहीं देंगे, इसे बोलने दे लेकिन हम नहीं बोलेंगे। अब सब ने अंदर में ये ठान लिया। अब जैसे ही वो बाहर आई और बोलने लगी, कोई उसे जवाब न दे, सोच में पड़ गई कि आखिर क्या बात है, आज कोई जवाब क्यों नहीं देता। तो अंदर में जोश तो था ही, गुस्सा तो था ही, तो आवाज कहीं से नहीं आ रही थी और वो आवाज चाहती थी। तो सामने ही एक कुआं था, उसने कुएं में जैसे ही झांका तो अपना प्रतिबिंब उसे दिखाई दिया और उसे लगा कि शायद कोई और है इस कुएं में, और उसने गुस्से में आकर के एक पत्थर फेंका कुएं में, और जैसे ही पत्थर गिरा एक आवाज हुई तुबु, फिर दूसरा पत्थर फेंका, फिर से आवाज हुई तुबु। अब उसे लगा कि कोई उस कुएं में है और टुबुक शब्द वो बोल रहा है, लेकिन मैंने पत्थर फेंका है इसलिए आवाज हुई, ये उसकी बुद्धि भी नहीं आया। लेकिन कम से कम किसी ने आवाज तो दी, और वो आवाज सुनते ही उसका ये रिएक्शन हुआ कि गुस्से में आकर उसने कहा, तुम कौन होते हो टुबुक टुबुक बोलने वाले, तू टुबुक, तेरा बाप टुबुक, अर्थात गुस्से में आकर के उसने अपने ही प्रतिबिंब से लड़ाई करना चालू कर दी। तो देखिए, ये है मनुष्य की स्थिति। तो अगर हम कम बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, तो हम केवल खुद को ही सुख नहीं देते लेकिन समाज को भी हम सुख प्रदान कर सकते हैं। परंतु यह लक्ष्य अवश्य होना चाहिए, और तीनों में से अगर एक को भी अपना लक्ष्य बनाया तो बाकी दो अपने आप आ जाएंगे। अब इनका अनुभव करने के लिए एक महान गुण की आवश्यकता है, और वह है धीरज का गुण। धीरज का फल निथारे। हम कई बार ऐसे शब्द बोल देते हैं जबकि हमें मौन रहना चाहिए था, क्योंकि हम शब्द बोल करके अपने लिए ही नुकसान खड़ा कर देते हैं, अपने लिए ही झमेला रख कर देते हैं, मानो अपने लिए ही समस्या पैदा कर लेते हैं ऐसे कई शब्द बोल करके। तो धीरज का गुण बहुत मीठा है, लेकिन ये धीरज का गुण कैसे आएगा? धीरज का गुण तब आएगा जब अंदर में मन का मौन होगा। कई लोग हमने देखे हैं मुख का मौन तो रखते हैं, वे व्रत रखते हैं और उस दिन साथ साथ ये भी सोचते हैं कि आज हम मौन में रहेंगे। तो जितना ही मुख का मौन एक उत्तम पुरुषार्थ है, वैसे ही मन का मौन उससे भी उत्तम पुरुषार्थ है। मुख का मौन रखना तो फिर भी सहज है, लेकिन साथ साथ मन का भी मौन हो, अर्थात मन भी उस समय कुछ न सोचे। कई बार हम मुख से तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन मन तो हमारा बहुत चलता है। इतनी गति तीव्र होती है मन के विचारों की कि उस समय हम रोक नहीं पाते और मौन होते हुए भी हम मुख से शब्द निकाल देते। तो जैसे एक कार में जितना ही एक्सेलरेटर उपयोगी है, उतना ही ब्रेक भी शक्तिशाली होनी चाहिए। अगर एक्सेलरेटर हो पर ब्रेक न हो किसी गाड़ी में, तो आप सोच सकते हैं उस गाड़ी की क्या हालत हो जाएगी। तो अगर हम बोल सकते हैं, जो मनुष्य की एक बहुत बड़ी शक्ति है, शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, अपने दिल के उद्गार शब्दों द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी कला है। लेकिन जितना ही हम बोले उतना ही मन का मौन भी रख सके, अर्थात हम मुख से भी शांत रहें और उसके लिए मन को भी शांत रखें। कई बार हमारे बोल जब हमारे लिए समस्या खड़ी कर देते हैं, तब हम सोचते हैं कि ऐसे मैंने क्यों कहा, अगर मैं ऐसे नहीं कहता तो शायद ये नहीं होता। लेकिन कहा जाता, अब पछतावत क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। हमने वो शब्द बोल दिए, वो तीर समान मेरे मुख से निकल गए, तो जो तीर एक बार कमान से छूटता है, वो वापस कमान में लौट कर नहीं आता। तो कई बार हम देखते हैं ये हमारे जो होंठ हैं, वो भी कमान के समान है और शब्द तीर के समान है। और एक कहावत प्रसिद्ध है कि गोल्डन वर्ड्स आर नेवर रिपीटेड। जो श्रेष्ठ शब्द होते हैं वो नपे तुले होते हैं, कम होते हैं और वे मूल्यवान होते हैं। लेकिन शब्दों से भी मौन ये अति उत्तम है। इसीलिए कहा गया है, स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्ड। तो स्पीच द्वारा, शब्दों द्वारा हम अपने दिल की बातें सुनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शांति की शक्ति द्वारा, साइलेंस की शक्ति द्वारा हम बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं जो शब्दों द्वारा नहीं कर सकते। तो वाचा शक्ति का कम खर्च होगा तो हमारी वाणी शक्तिशाली होगी, प्रभावशाली होगी। जो व्यक्ति कम बोलते हैं, वो व्यक्ति समाज में बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं, लोग उसे महत्व देते हैं, उनके शब्दों की कदर करते हैं। और हम अगर मौन में रहना सीख गए, तो हम तो समझेंगे कि आपकी आत्मिक शक्तियों का विकास होना शुरू हो जाएगा। मन का मौन, अर्थात जिस समय हमें सोचना है उसी समय हम सोचें, और अगर नहीं सोचना है तो नहीं सोचें। जैसे एक्सेलरेटर दबाना है, गाड़ी को आगे बढ़ाना है, तो वो चीज दबाएंगे, परंतु एक्सेलरेटर के बजाय हम ब्रेक दबा देंगे तो हमारी गाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन जब ब्रेक दबानी है और उसके बजाय आपने एक्सेलरेटर दबा दिया, तो आप सोच सकते हैं क्या हालत होगी गाड़ी की। तो जिस समय शांत रहना है उस समय हम शांत रह सके, जिस समय बोलना है उस समय हम बोले, ये हमारे अंदर बुद्धि हो, हमारे अंदर समझ हो। और जिस समय सोचना भी नहीं है तो उस समय भी हम न सोचे, ये भी हमारे अंदर क्षमता हो। जैसे हम रात को सोते हैं, अब उस समय सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। सारे दिन का कारोबार समेट करके अब हमें नींद करनी है, तो हमें उस समय वो शक्ति होनी चाहिए कि हम अपने संकल्पों को हम समेट सके, एक सेकंड में बिंदु लगा सके। जैसे हम इंग्लिश में वाक्य लिखते हैं तो वाक्य पूर्ण करने के लिए फिर हम अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं, बिंदु लगा देते हैं। इसी प्रकार कोई भी संकल्प अगर मन में उत्पन्न होता है और हम सोचते हैं कि इस संकल्प को करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसी समय हम मन में एक संकल्प लाएं, मैं एक आत्मा हूं। यह आत्मा हूं संकल्प एक बिंदु समान है, फुल स्टॉप पूर्ण विराम के समान है, और तुरंत मेरे व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे और मन का मौन हो जाएगा। मन का मौन रखने से हमारी कई साधनाएं सफल होगी। मान लीजिए हमें कोई दृढ़ संकल्प करना है, तो उस दृढ़ संकल्प में भी अगर मन का मौन होगा और उस धीरे धीरे उस संकल्प की गहराई में हम जाएंगे, तो हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति पैदा होगी और यह शक्ति हमारे किसी भी साधना में हमें सफलता प्रदान करेगी। हमारे बोल ऐसे हो जो दूसरों पर सुख बरसाए, प्रेम रस भर दे, शांति प्रदान करे, उमंग उत्साह बढ़ाए, उनके जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा दे, निराश व्यक्ति में आशा की किरण पैदा कर दे। अगर ये सब हम नहीं कर पाते हैं तो उससे तो शांत रहना अच्छा है। अगर हमारे बोल से किसी को दुख मिलता हो तो हम शांत रहें वो बेहतर है, बजाय कि हमारे शब्द हम बोल करके किसी को दुख प्रदान करें। अगर हमारे शब्दों से किसी का उमंग उत्साह हम नहीं बढ़ा सकते हैं, तो कम से कम हम शांत रह करके उनको अपने उमंग उत्साह में रहने दें, लेकिन हमारे शब्द किसी के उमंग उत्साह को नष्ट न करें। अगर हम किसे श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा नहीं दे सकते, तो कम से कम हम शांत रह करके उनको जिस प्रकार वे कर्म कर रहे हैं वे ही कर्म हम करने दें। अगर हम आशा की किरण नहीं पैदा कर सकते, तो कम से कम किसी व्यक्ति को निराश तो न करें। कोई व्यक्ति उमंग उत्साह में हो तो हम उनका उमंग उत्साह अच्छे कार्य के लिए खत्म तो न कर दें। तो इसीलिए हमारे शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे हमने बतलाया कि हमारे बोल किसी को तख्त पर बिठा सकते हैं, किसी को तख्ते पर चढ़ा सकते हैं, तो क्यों नहीं अपने जीवन को ऊंच बनाने लिए अन्य आत्माओं के अंदर भी उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए एक दृढ़ संकल्प करें। रोज तो हम न मौन रह सकते हैं न हम शांति में रहना चाहेंगे भी, लेकिन कम से कम सप्ताह में एक दिन हम लक्ष्य रखें कि आज का दिन मुझे मौन में रहना है। केवल मुख का मौन ही नहीं, परंतु मन का भी मौन, अपने संकल्पों को फुल स्टॉप लगा देना। अगर सप्ताह में एक पूरा दिन नहीं कर सकते हो तो हर दिन एक घंटा लक्ष्य रखो कि मुझे एक घंटा मौन में रहना है, कुछ नहीं बोलना है। और हम आपको अनुभव से बता सकते हैं कि अगर आपने मौन में रहने का एक लक्ष्य रखा तो आपकी कितनी समस्याएं हल हो जाएंगी। जो अधिक बोलने से आपकी समस्याएं बढ़ रही थी, वो मौन में रहने से अपने आप हल हो जाएंगी। तो केवल मुख का ही मौन न हो लेकिन मन का भी मौन हो। तो यह कहावत अवश्य याद रखें, कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। और तीनों में से अगर एक को भी लक्ष्य बनाया तो दो तो अपने आप ही आ जाएंगे। तो इसी के साथ आज हम सब ये प्रतिज्ञा करें कि हम अपने वचनों को वरदान का रूप बनाएं, श्राप का रूप नहीं। हम अपने वरदानों द्वारा अनेक आत्माओं को उमंग उत्साह प्रदान करके खुद का भी जीवन श्रेष्ठ बनाएं और सबका श्रेष्ठ बनाएं। ओम।